महाकवि सूरदास हिंदुओं के स्वातंत्र के साथ ही साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छिपी। उस हीन दशा के बीच में वे अपने पराक्रम के गीत किस मुंह से गाते और किन कानों से सुनते। जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। राम और रहीम को एक बताने वाली बानी मुरझाए मन को हरा न सकी, क्योंकि उसके भीतर उस कट्टर एकेश्वरवाद का सुर मिला हुआ था, जिसका ध्वंसकारी स्वरूप लोग नित्य अपनी आंखों देख रहे थे। सर्वस्व गंवा कर भी हिंदू जाति अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखने की वासना नहीं छोड़ सकी थी। इससे उसने अपनी सभ्यता, अपने चिर संचित संस्कार आदि की रक्षा के लिए राम और कृष्ण का आश्रय लिया और उनकी भक्ति का स्रोत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया। जिस प्रकार वंग देश में कृष्ण चैतन्य ने, उसी प्रकार भारत में वल्लभाचार्य जी ने परम भाव की उस आनंद विधायिनी कला का दर्शन कराकर, जिसे प्रेम कहते हैं, जीवन में सरसता का संचार किया। दिव्य प्रेम संगीत की धारा में इस लोक का सुखद पक्ष निखर आया और जमती हुई उदासी या खिन्नता बह गई। जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा, जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवसर पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर व्रज के करील कुंजों के बीच फैलकर मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की की थी। ये भक्त कवि सगुण उपासना का रास्ता साफ करने लगे। निर्गुण उपासना की निरस्ता और अग्राह्यता दिखाते हुए ये उपासना का हृदय ग्राही स्वरूप सामने लाने में लग गए। इन्होंने भगवान का प्रेममय रूप ही लिया। इससे हृदय की कोमल वृत्तियों के ही आश्रय और आलंबन खड़े किए गए। आगे जो इनके अनुयायी कृष्ण भक्त हुए, ये भी उन्हीं वृत्तियों में लीन रहे। हृदय की अंतःवृत्तियों, उत्साह आदि के रंजनकारी रूप भी यदि ये चाहते तो कृष्ण में ही मिल जाते, पर उनकी ओर ये न बढ़े। भगवान का यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय था, केवल प्रेम था, पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी, उसे हटाने में उपयोगी हुआ। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। बाल्यकाल और यौवन काल कितने मनोहर हैं, उनके बीच की नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। उक्त दोनों रसों के प्रवर्तक रति भाव के भीतर की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतने का कोई और नहीं। हिंदी साहित्य में श्रृंगार कर रसराजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने। उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचना वाले कवियों के समान गिनाए संचारियों से बंध कर चलने वाली न थी। यदि हम सूर के केवल विप्रलम्ब श्रृंगार को ही लें अथवा भ्रमर गीत को ही देखें, तो न जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएं ऐसी मिलेंगी जिनके नामकरण तक नहीं हुए हैं। मैं इसी को कवियों की पहुंच कहता हूं। यदि हम मनुष्य जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं तो सूरदास की दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है, पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुंच का विस्तार अधिक पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अंतर दृष्टि विस्तार और किसी कवि का नहीं। बात यह है कि सूर को गीति काव्य की जो परंपरा मिली वह श्रृंगार की ही थी, इसी से सूर के संगीत में भी उसी की प्रधानता रही। दूसरी बात है उपासना का स्वरूप। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जिन्होंने मुक्ति का मार्ग दिखलाया था। भक्ति साधना के इस चरम लक्ष्य या फल की ओर सूर ने कहीं कहीं संकेत भी किया है, जैसे शीत उष्ण सुख दुख नहीं माने, हानि भय कछ सोच न राचे, जाए समाए सूर वा निधि में, बहुरी न उलटी जगत में नाचे। जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आलंबन की एकता है। अतः भगवत भक्ति की साधना के लिए इसी प्रेम तत्व को वल्लभाचार्य ने सामने रखा और उनके अनुयायी कृष्ण भक्त कवि इसी को लेकर चले। गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि व्यक्तिगत साधना के अतिरिक्त लोक पक्ष पर थी, इसी से वे मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को लेकर चले और उसमें लोक रक्षा के अनुकूल जीवन की और वृत्तियों का भी उन्होंने उत्कर्ष दिखाया और अनुरंजन किया। उक्त प्रेम तत्व की पुष्टि में ही सूर की वाणी मुख्यतः प्रयुक्त जान पड़ती है। रति भाव के तीन प्रबल और प्रधान रूप भगवत विषयक रति, वात्सल्य और दाम्पत्य रति सूर ने लिए हैं। यद्यपि पिछले दोनों प्रकार के रति भाव भी कृष्णोन्मुख होने के कारण तत्वतः भगवत प्रेम के अंतर्भूत ही हैं, पर निरूपण भेद से और रचना विभाग की दृष्टि से अलग रखे गए हैं। इस दृष्टि रूप से विभाग करने से विनय के जितने पद हैं ये भगवत विषयक रति के अंतर्गत आएंगे। बाल लीला के पद वात्सल्य के अंतर्गत और आतुर गोपियों के प्रेम संबंधी पद दाम्पत्य रति भाव के अंतर्गत होंगे। हृदय से निकली हुई प्रेम की इन तीनों प्रबल धाराओं से सूर ने बड़ा भारी सागर भरकर तैयार किया है। कवि कर्म विधान के दो पक्ष होते हैं, विभाव पक्ष और भाव पक्ष। कवि एक ओर तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है जो मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए भाव को और जगाने में समर्थ होती है, और दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है। एक विभाव पक्ष है, दूसरा भाव पक्ष। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य में ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, अतः दोनों रहते हैं। जहाँ एक ही पक्ष का वर्णन रहता है वहाँ भी दूसरा पक्ष अव्यक्त रूप में रहता है। जैसे नायिका के रूप या नक्षिक का कोरा वर्णन ले तो उसमें आश्रय का रति भाव अव्यक्त रूप में वर्तमान रहता है। भाव पक्ष में सूर की पहुंच का उल्लेख ऊपर हो चुका है। सूरदास जी ने श्रृंगार और वात्सल्य यही दो रस लिए हैं, अतः विभाव पक्ष में भी उनका वर्णन उन्हीं वस्तुओं तक परिमित है जो उक्त दोनों रसों के आलंबन या उद्दीपन के रूप में आ सकती हैं। जैसे राधा और कृष्ण के नाना रूप, वेश और चेष्टाएं तथा करील कुंज, उपवन, यमुना, पवन, चंद्र, ऋतु इत्यादि। विभाव पक्ष के अंतर्गत भी वस्तुएं दो रूपों में लाई जाती हैं, वस्तु रूप में और अलंकार रूप में, अर्थात प्रस्तुत रूप में और अप्रस्तुत रूप में। मान लीजिए कि कोई कवि कृष्ण का वर्णन कर रहा है। पहले वह कृष्ण के श्याम या नील वर्ण शरीर को, उस पर पड़े पीताम्बर को, त्रिभंगी मुद्रा को, स्मित आनंद को, हाथ में ली हुई मुरली को, सिर के कुंचित केश और मोर मुकुट आदि को सामने रखता है। यह विन्यास वस्तु रूप में हुआ। इसी प्रकार का विन्यास यमुना तट, निकुंज की लहराती लताओं, चंद्रिका, कोकिल कूजन आदि का होगा। इसके साथ ही यदि कृष्ण के शोभा वर्णन में घन और दामिनी, सनाल, कमल आदि उपमान के रूप में वह लाता है तो वह विन्यास अलंकार रूप में होगा। वर्ण विषय की परिमिति के कारण वस्तु विन्यास का जो संकोच सूर की रचना में दिखाई पड़ता है उसका बहुत कुछ असर अलंकार के रूप में लाए हुए पदार्थों के प्राचुर्य द्वारा पूरी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरे प्रकार की रूप योजना या व्यापार योजना किसी और रूप के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही होती है, अतः इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे ही होने चाहिए जो प्रभाव से उन प्रस्तुत रूपों या व्यापार के समान हो। अलंकार योजना के लिए अधिकतर ऐसे ही पदार्थ लाए हैं। सारांश यह कि यदि हम बाह्य सृष्टि से लिए गए रूपों और व्यापारों के संबंध में सूर की पहुंच का विस्तार करते हैं तो यह बात स्पष्ट देखने में आती है कि प्रस्तुत रूप में लिए हुए पदार्थों और व्यापारों की संख्या परिमित है। उन्होंने कृष्ण और राधा के अंग प्रत्यंग, मुद्राओं और चेष्टाओं, यमुना तट, वंशीवट, निकुंज, गोचारण, वन विहार, बाल लीला, चोरी, नटकटी तथा कवि परिपाटी में परिगणित ऋतु सुलभ वस्तुओं तक ही अपने को रखा है। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इनकी रचना गीति काव्य है जिसमें मधुर ध्वनि प्रवाह के बीच कुछ चुने हुए पदार्थों और व्यापारों की झलक भर काफी होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस के समान सूर सागर प्रबंध काव्य नहीं है जिसमें कथाक्रम से अनेक पदार्थों और व्यापारों की श्रृंखला जुड़ती चली चलती है। सूरदास जी ने प्रत्येक लीला या प्रसंग पर फुटकर पद कहे हैं, एक पद दूसरे पद से संबद्ध नहीं है। प्रत्येक पद स्वतंत्र है। इसी से किसी एक प्रसंग पर कहे हुए पदों को यदि हम लेते हैं तो एक ही घटना से संबंध रखने वाली एक ही बात भिन्न भिन्न रागिनियों में कुछ फेरफार के साथ बहुत से पदों में मिलती है, जिससे पढ़ने वाले का जी कभी कभी ऊब सा जाता है। यह बात प्रकृत प्रबंध काव्य में नहीं होती। परिमिति का दूसरा कारण पहले ही कहा जा चुका है कि सूरदास जी ने जीवन के वास्तव में दो ही वृत्तियां ली हैं, बाल वृत्ति और यौवन वृत्ति। इन दोनों के अंतर्गत आए हुए व्यापार, क्रीड़ा, उमंग और उद्रेक के रूप में ही हैं। प्रेम भी घटनापूर्ण नहीं है, उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न विस्तार नहीं है, जिसके भीतर नई नई वस्तुओं और व्यापारों का सन्निवेश होता चलता है। लोक संघर्ष से उत्पन्न विविध व्यापारों की योजना सूर का उद्देश्य नहीं है, उनकी रचना जीवन की अनेक रूपता की ओर नहीं गई है। बाल क्रीड़ा प्रेम के रंग रहस्य और उसकी अतृप्त वासना तक ही रह गई है। जीवन की गंभीर समस्याओं से तटस्थ रहने के कारण उसमें यह वस्तु गंभीर नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। परिस्थिति की गंभीरता के अभाव से गोपियों के वियोग में भी वह गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग में है। उनका वियोग खाली बैठे का काम सा दिखाई पड़ता है। सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूसरे द्वीप में राक्षसों के बीच पड़ी हुई थी। गोपियों के गोपाल केवल दो चार कोस दूर एक नगर में राज सुख भोग रहे थे। सूर का वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते करते कुंज या झाड़ी में जा छिपते हैं, या यूं कहिए कि थोड़ी देर के लिए अंतर्धान हो जाते हैं। बस गोपियां मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा उमड़ चलती है, पूर्ण वियोग दशा उन्हें आ घेरती है। यदि परिस्थिति का विचार करें तो ऐसा विरह वर्णन असंगत प्रतीत होगा, पर जैसा कहा जा चुका है, सूर सागर प्रबंध काव्य नहीं है जिसमें वर्णन की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता के निर्णय में घटना या परिस्थिति के विचार का बहुत कुछ योग रहता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बीच हम सूर के बाल कृष्ण को ही थोड़ा बहुत देखते हैं। कृष्ण के केवल बाल चरित्र का प्रभाव नंद, यशोदा आदि परिवार के लोगों और पड़ोसियों पर पड़ता दिखाई देता है। सूर का बाल लीला वर्णन ही पारिवारिक जीवन से संबद्ध है। कृष्ण छोटे छोटे पैरों से चलने, मुंह में मक्खन लिपटा कर भागने या इधर उधर नटखटी करने पर नंद बाबा और यशोदा मैया का कभी पुलकित होना, कभी खींचना, कभी पड़ोसियों का प्रेम से उलाहना देना आदि बातें एक छोटे से जनसमूह के भीतर आनंद का संचार करती दिखाई गई हैं। इसी बाल लीला के भीतर कृष्ण चरित का लोक पक्ष अधिकतर आया है, जैसे कंस के भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को नाथ कर लोगों का भय छुड़ाना, इंद्र के कोप से डूबती हुई बस्ती की रक्षा करने और नंद को वरुणा लोक से लाने का वृत्तांत यद्यपि प्रेम लीला आरंभ होने के पीछे आया है पर उससे संबद्ध नहीं है। कृष्ण के चरित्र में जो यह थोड़ा बहुत लोक संग्रह दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप में सूर की वृत्ति लीन नहीं हुई है। जिस शक्ति से उस बाल्यावस्था में ऐसे प्रबल शत्रुओं का दमन किया गया, उसके उत्कर्ष का अनुरंजनकारी और विस्तृत वर्णन उन्होंने नहीं किया है। जिस ओज और उत्साह से तुलसीदास ने मारीच, ताड़का, खरदूषण आदि के निपात का वर्णन किया है, उस ओज और उत्साह से सूरदास जी ने बकासुर, अघासुर, कंस आदि के वध और इंद्र के गर्व मोचन का वर्णन नहीं किया है। कंस और उसके साथी असुर भी कृष्ण के शत्रु के रूप में ही सामने आते हैं, लोक शत्रु या लोक पीड़क के रूप में नहीं। रावण के साथी राक्षसों के समान ये ब्राह्मणों को चबा चबा कर उनकी हड्डियों का ढेर लगाने वाले या स्त्री चुराने वाले नहीं दिखाई पड़ती। उनके कारण वैसा हाहाकार नहीं सुनाई पड़ता, उनका अत्याचार सभ्य अत्याचार जान पड़ता है। शक्तिशील और सौंदर्य, भगवान की इन तीन विभूतियों में से सूर ने केवल सौंदर्य तक ही अपने को रखा है, जो प्रेम को आकर्षित करता है। शेष दो विभूतियों को भी लेकर भगवान के लोक रंजनकारी स्वरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा हमारे हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास ने की। श्रद्धा या महत्व बुद्धि पुष्ट करने के लिए कृष्ण की शक्ति या लौकिक महत्व की प्रतिष्ठा में आग्रह न दिखाने के कारण ही सूर की उपासना सख्य भाव की कही जाती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ सूरदास द्वारा वर्णित कृष्ण चरित्र का जो थोड़ा बहुत संबंध दिखाई पड़ता है, उसका सम्यक स्फुरण नहीं हुआ है। रहा प्रेम पक्ष, वह एकांतिक है। सूर का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। गोपियों के प्रेम भाव की गंभीरता आगे चलकर उद्धव का ज्ञान मार्ग मिटाती हुई दिखाई पड़ती है। वह भक्ति की एकांत साधना का आदर्श प्रतिष्ठित हुई जान पड़ती है, लोक धर्म के किसी अंग का नहीं। सूरदास सच्चे प्रेम मार्ग के त्याग और पवित्रता को ज्ञान मार्ग के त्याग और पवित्रता के समकक्ष रखने में खूब समर्थ हुए हैं। साथ ही उन्होंने उस त्याग को रागात्मिका वृत्ति द्वारा प्रेरित दिखाकर भक्ति मार्ग की सुगमता भी प्रतिपादित की है। तुलसी के समान लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापी दशाएं सूर ने वर्णन के लिए नहीं ली हैं। असुरों के अत्याचार से दुखी पृथ्वी की प्रार्थना पर भगवान का कृष्ण अवतार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पद में कह डाला है। इसी प्रकार कागासुर, बकासुर, शकटासुर आदि को हम लोक पीड़कों के रूप में नहीं पाते हैं। केवल प्रलंब और कंस के वध पर देवताओं का फूल बरसाना देखकर उक्त कर्म के लोकव्यापी प्रभाव का कुछ आभास मिलता है, पर यह वर्णन विस्तृत नहीं है। सूरदास का मन जितना नंद के घर की आनंद बधाई, बाल क्रीड़ा, मुरली की मोहिनी तान, रास नृत्य, प्रेम का रंग रहस्य और संयोग वियोग के नाना दशाओं में लगा है, उतना ऐसे प्रसंगों में नहीं। ऐसे प्रसंगों को उन्होंने किसी प्रकार चलता कर दिया है। कुछ लोग रामचरितमानस में राम के प्रत्येक कर्म पर देवताओं का फूल बरसाना देखकर उबते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि गोस्वामी जी ने राम के प्रत्येक कर्म के ऐसे व्यापक प्रभाव का चित्रण किया है जिस पर तीनों लोकों की दृष्टि लगी रहती थी। कृष्ण का गोचारण और रासलीला आदि देखने को भी देवगण एकत्र हो जाते हैं, पर केवल तमाशबीन की तरह। सूरदास जी को मुख्यतः श्रृंगार और वात्सल्य का कवि समझना चाहिए, यद्यपि और रसों का भी एकाध जगह अच्छा प्रदर्शन मिल जाता है, जैसे दावानल के इस वर्णन में भयानक रस का। बहरात जहरात दावानल आयो, घेरी चहु ओर करिसोर अंदोर, बन धरनी आकाश चहु पास छायो, बरत बन बांस थहरत कुसकांस, जरी उड़त बहु झांस अति प्रबल धायो, झपटी झपटत लपट फूल फूटत पटकी चटकी द्रुम फटी नवायो, अति अग्नि झार भंभार धुंधार करी उचती अंगार झंझार छायो, बरत बन पात भहरात जहरात अहरात तरु महाधरणी गिरायो। पर जैसा कहते आ रहे हैं मुख्यतः श्रृंगार और वात्सल्य की ही है, पर इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों रसों के ये सबसे बड़े कवि हैं। यहाँ तक तो सूर की सामान्य दृष्टि से समीक्षा हुई। अब इन महाकवि की उन विशेषताओं का थोड़ा बहुत दिग्दर्शन होना चाहिए जिनके कारण हिंदी साहित्य में इनका स्थान इतना ऊँचा है। ध्यान देने की सबसे पहली बात यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण के अगले कवियों को श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां इनकी जूठी जान पड़ती हैं। यह बात हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों को उलझन में डालने वाली होगी। सूर सागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं। यदि भाषा को लेकर देखते हैं तो वह ब्रज की चलती बोली होने पर भी साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो और प्रांतों के कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों के साथ पुरानी काव्य भाषा अपभ्रंश के शब्दों को लिए हुए है। सूर की भाषा बिल्कुल बोलचाल की ब्रजभाषा नहीं है। जाको, तासो, वाको चलती ब्रजभाषा के इन रूपों के समान ही जेही, तेही आदि पुराने रूपों का प्रयोग मिलता है, जो अवधि की बोलचाल में तो अब तक है, पर ब्रज की बोलचाल में सूर के समय में भी नहीं थे। पुराने निश्चयार्थक पै का व्यवहार भी पाया जाता है, जैसे जाही लगे सोई पै, जाने प्रेम बान अनियारो, गोड़ आपन हमार आदि पूर्वी प्रयोग भी बराबर पाए जाते हैं। कुछ पंजाबी प्रयोग भी मौजूद हैं, जैसे महंगी के अर्थ में प्यारी शब्द। ये सब बातें एक व्यापक काव्य भाषा के अस्तित्व की सूचना देती हैं। अब हम संक्षेप में उन प्रसंगों को लेते हैं जिनमें सूर की प्रतिभा पूर्णतया लीन हुई है। कृष्ण जन्म का आनंद बधाई के उपरांत ही बाल लीला का आरंभ हो जाता है। जितने विस्तृत और विशद रूप में बाल जीवन का चित्रण इन्होंने किया है, उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं। शैशव से लेकर कौमार अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है, कवि ने बालकों की अंत प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल्य भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। देखिए स्पर्धा का भाव जो बालकों में स्वाभाविक होता है, इन वाक्यों से किस प्रकार व्यंजित हो रहा है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जो वह लांबी मोटी। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूर सागर में है। दो चार चित्र देखिए। एक, कतहो आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, जो मांगहु सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी, सूरदास को ठाकुर ठाड़ो, हाथ लकुट लिए छोटी। दो शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तीन सिखवत चलन जसोदा मैया अर बराए करी पानी गहावत डगमगाए धरे पैया। चार पाहुनो करी दे नतक मैयो आदि करे मन मोहन मेरो अंचल आनी गयो व्याकुल मथत मथनिया रीति दधि भय ढरकी रहो। हार जीत के खेल में बालकों के शोभ के कैसे स्वाभाविक वचन सूर ने रखे हैं। खेलत मेको काको गोसैया हरि हारे जीते श्री दामा बरबस ही कतकरत रिसैया। जाति पाति हमते कछु नाही नाही बसत तुम्हारे छैया अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे है कछु गैया। अब यहाँ पर थोड़ा इसका निर्णय हो जाना चाहिए कि इस बाल चेष्टा का काव्य विधान में क्या स्थान होगा। वात्सल्य रस के अनुसार बालक कृष्ण आलंबन होंगे और नंद या यशोदा आश्रय। अतः ये चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत आती हैं, पर आलंबनगत चेष्टाएं उद्दीपन के ही भीतर आ सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ऐसे चेष्टाओं का स्थान भाव विधान के ही भीतर है। उन्हें अलंकार विधान के भीतर घसीटकर स्वभावोक्ति अलंकार कहना मेरी समझ में ठीक नहीं। बाल लीला के आगे फिर उस गोचारण का मनोरम दृश्य सामने आता है जो मनुष्य जाति की अत्यंत प्राचीन वृत्ति होने के कारण अनेक देशों में काव्यप्रिय विषय रहा है। यवन देश के पशुचारण काव्य का मधुर संस्कार यूरोप की कविता पर अब तक कुछ न कुछ चला ही जाता है। कवियों को आकर्षित करने वाली गोप जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश। कृषि वाणिज्य आदि और व्यवसाय जो आगे चलकर निकले वे अधिक जटिल हुए, उनमें उतनी स्वच्छंदता न रही। कवि श्रेष्ठ कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के आरंभ में दिलीप को नंदिनी के साथ वन वन फिरा कर इसी मधुर जीवन का आभास दिखाया है। सूरदास जी ने यमुना के कछारों के बीच गोचारण के बड़े सुंदर सुंदर दृश्यों का विधान किया है, यथा मैया रि मोहि दाउ टेरत मोको बनफल तोरी देत हैं आपुन गैयन घेरत। यमुना तट पर किसी बड़े पेड़ की शीतल छाया में बैठकर कभी सब सखा कलेऊ बांटकर खाते हैं, कभी इधर उधर दौड़ते हैं, कभी कोई चिल्लाता है द्रुम चढ़ी काहे न टेरत कान्हा गैया दूरी गई धाई जाति सबन के आगे जे वृषभान दई। जे वृषभान दई कहकर सूर ने पशु प्रकृति का अच्छा परिचय दिया है। नए खूटे पर आई गायें बहुत दिनों तक चंचल रहती हैं और भागने का उद्योग करती हैं। इसी से वृषभानु की दी हुई गायें चरते समय भी भाग खड़ी होती हैं और कुछ दूसरी गायें भी स्वभावानुसार उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं। वृंदावन के उसी सुखमय जीवन के हास परिहास के बीच गोपियों के प्रेम का उदय होता है। गोपियां कृष्ण के दिन दिन खिलते हुए सौंदर्य और मनोहर चेष्टाओं को देख मुग्ध होती चली जाती हैं और कृष्ण कौमार अवस्था की स्वाभाविक चपलतावश उनसे छेड़छाड़ करना आरंभ करते हैं। हास परिहास और छेड़छाड़ के साथ प्रेम व्यापार का अत्यंत स्वाभाविक आरंभ सूर ने दिखाया है। किसी की रूपचर्या सुन या अकस्मात किसी की एक झलक पाकर हाय हाय करते हुए इस प्रेम का आरंभ नहीं हुआ है। नित्य अपने बीच चलते फिरते हंसते बोलते वन में गाय चराते देखते देखते गोपियां कृष्ण में अनुरक्त होती हैं और कृष्ण गोपियों में। इस प्रेम को हम जीवन उत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, जिसमें अनेक प्रकार के प्रतिबिंबों और विघ्न बाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी कथा खड़ी होती है। सूर के कृष्ण और गोपियां पक्षियों के समान स्वच्छंद हैं। ये लोग बंधनों में जकड़े हुए नहीं दिखाए गए हैं। जिस प्रकार के स्वच्छंद समाज का स्वप्न अंग्रेज कवि शैली देखा करते थे, उसी प्रकार का यह समाज सूर ने चित्रित किया है।